हमारे सुनने वाले सभी श्रोतागण, राठौर कैसेट कंपनी की तरफ से हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ में किस तरीके से हुआ था, तो देख रहे हैं राठौर कैसेट में कि रुक्मिणी का विवाह श्याम सुंदर के साथ किस तरीके से हुआ था। गौर करते हैं, कुंदनपुर में महाराज भीष्मक का राज्य था। महाराज भीष्मक जो राज्य करते थे, इनके घर में 5 लड़के थे और रुक्मिणी नाम की एक बहुत सुंदर लड़की थी। कैसे थे राजा?
अरे प्रजा रहे अति मगन न चिंता है युर में, होई बड़ाई राजा की सब घर घर में। अरे प्रजा रहे सब मगन न छोटी थी और रुक्मिणी जब सहेलियों में एक बार खेल रही थी, छोटी छोटी सहेलियों में, और रुक्मिणी जब आंगन में खेल रही थी और उसी समय रुक्मिणी के पास से एक ब्राह्मण देव गाते हुए निकल गए। ब्राह्मण देव गाते हुए जब निकले हैं, कह रहे थे, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है जिन्हें हो, जैसे ही ब्राह्मण देव ने श्याम सुंदर के बारे में कहा है कि ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया, और रुक्मिणी ने जैसे ही सुना है कि भगवान का अवतार हो गया, कहां रुक्मिणी छोटी थी उसी दिन से रुक्मिणी जो थी सोचा अपने हृदय में, क्या सोचा, कि सोचने लगी बिटिया मन में हर जीवन दिन व्यर्थ बीत रहे हैं। नाम लेती है, और अगर सहेलियों में कई बातें होने लगती हैं तो कृष्ण का ही नाम सुनाती है। अब आंगन में धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी होने लगी, और जब रुक्मिणी आंगन में बड़ी हुई, शादी के योग्य हुई, तो एक दिन रुक्मिणी की मां ने महाराज भीष्मक से कहा, जवाब दिया, महाराज आप हमारी एक बात को सुन लीजिए। तो भीष्मक कहने लगे, रानी क्या हुआ, बोलो क्या बात है। तो रुक्मिणी की मां बोली है, महाराज
कि मेरे पति प्राण प्यारे और सयानी तो हुई गई घर में लाड़ी,
शादी की योग्य है, इसलिए मेरा आपसे एक कहना है। क्या कहना है? तो रुक्मिणी की मां बोली है,
अरे बेटी सियानी भाई ये घर में कर लो तलाश,
उसके बाद भीष्मक बोले हैं, रानी चिंता की कोई बात नहीं है, समझाते हुए बोले,
अब किसी राजकुल की तलाश हम करें प्यारी जतन से, अब किसी राजकुल की तलाश हम करें प्यारी जतन से, बेटी के पीले हाथ करूं हाँ, बेटी के पीले हाथ करूं शुभ मुहूर्त विवाह लगन से आवे।
महाराज भीष्मक कहने लगे, रानी चिंता की कोई बात नहीं है, अभी हम दरबार में जा रहे हैं और दरबार के लोगों से सलाह मिलाएंगे। इतने शब्द कहने के बाद में महाराज भीष्मक जो थे तुरंत ही महलों से निकल करके वो दरबार में जब पहुंचे हैं और दरबार में पहुंच करके राजगद्दी पर बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए बोले, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आपको तो मालूम है कि हमारे घर में रुक्मिणी नाम की बड़ी सुंदर लड़की है और अब वो शादी के योग्य है। मेरा ये कहना है कि हम रुक्मिणी का विवाह करना चाहते हैं, अगर आपकी नजर में कोई लड़का हो तो आप हमें बता दीजिए जिसके साथ में हम रुक्मिणी का विवाह कर सके। जैसे ही इतने शब्द सुने तो एक खड़ा हो गया, बोला, महाराज हाँ हाँ बोलो, क्या तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? बोले, महाराज मेरी नजर में लड़का है। क्या नाम है उसका? अगर रुक्मिणी का विवाह जरा सिंधु के साथ में हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। दूसरा खड़ा हो गया, नहीं महाराज, अरे जरा सिंधु को तो भगवान कन्हैया ने 17 बार परास्त किया और उसके साथ में ना जी ना, बिल्कुल नहीं, रुक्मिणी का विवाह नहीं हो सकता।
और बताओ,
कहने का मतलब ये है भक्तो
कि दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनान लगे, कछु और लोग खड़े हुई कि तब गुड़ और ये बतान लगे, दरबार के एक नहीं बल्कि जो भी खड़े होके राजा का नाम बताता है और दूसरा खड़ा हो जाता है, नहीं महाराज इसके अंदर तो ये अवगुण है, ना जी ना, शादी नहीं। अगर एक नाम बताता है तो दूसरा अवगुणों को गिनाने लगता है, ऐसा ही नहीं। बल वैभव कीर्ति सुनाने को कोई भी बाकी रहा नहीं,
और गंतन तक तरह छिड़ी रही रे पर विवाह तई कहीं हुआ नहीं,
सुबह से शाम हो गई लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह हम किसके साथ में करें। तो भीष्मक कहने लगे, सोचो और बताओ, क्योंकि जब भगवान ने हमारे घर में लड़की भेजी है तो उसके लिए कोई ना कोई लड़का भी भेजा होगा, बताओ। सभा में सन्नाटा छाया हुआ है और तब तक भीष्मक का सबसे छोटा वाला लड़का खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, पिताजी हाँ हाँ बोलो, क्या मेरा भी बोलने का अधिकार है? क्यों नहीं बोलो, क्या तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? बोले, हाँ पिताजी मेरी नजर में लड़का है। तो बताओ। तो वो लड़का बोला है, पिताजी
तुम मानो मेरो के नारे जो घर में मेरी बहन रे, तुम
जवाब दिया है पिताजी, मेरी तो इच्छा यह है कि हमारी बहन का विवाह अगर श्याम सुंदर के साथ में हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। और जैसे ही भगवान कन्हैया का नाम सुना है तो सभा में तालियां बजने लगी। बाजीबा, अरे श्याम सुंदर का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। महाराज भीष्मक कहने लगे, बेटा तुमने सही बताया, श्याम सुंदर के साथ में ही हम रुक्मिणी का विवाह करेंगे। और जब ये कहा कि श्याम के साथ में रुक्मिणी का विवाह करेंगे, तब तक भीष्मक का बड़ा वाला लड़का रुकम आ गया और जवाब दिया, पिताजी क्या कह रहे हो, अरे हम अपनी बहन का विवाह और उस ग्वाले के साथ में कर दें, इसके तो माता पिता का भी ठिकाना नहीं है, चोरी करता रहा, वन वन में गाय चराता रहा और हम अपनी बहन का विवाह उसके साथ में। ना जी ना, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
तो भीष्मक कहने लगे, बेटा इतना क्रोध क्यों करते हो, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बता।
रघुम कहने लगा, पिताजी मेरी नजर में लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत बड़ा राजा है।
मतलब नाम क्या है उसका?
अरे तुम तो खूब देखा और तुम उसे जानते भी हो लेकिन तुम्हें याद नहीं आ रहा, बहुत बड़ा राजा है। रघुम बोला, पिताजी मेरी नजर में जो लड़का है कि कुल भी अच्छा बल भी अच्छा और जग में प्रभुताई अच्छी है। रुकम कहने लगा, पिताजी मेरी नजर में जो लड़का है ना,
आदत का बड़ा भोला भाला है
और रूप भी जिसका बड़ा निराला है,
अरे जिसका तो हर एक खेल ही आला है, हम तुम्हें क्या बताएं।
रुकम बोला,
बहुत बड़ा राजा है
और जिससे देवता भी डरते।
तो भीष्मक कहने लगे, बेटा क्या बड़ाई ही करते रहोगे, या उसका नाम भी बताओगे, जरा हम भी सुने कि ऐसा राजा कौन सा है, बोलो। तो रुकम कहने लगा, पिताजी हम तो भी बता रहे।
अरे सुनी बाबुल के बेन, अरे के रुकम आज समझावे,
ससपाल जो है ना, अगर हमारी बहन का विवाह उसके साथ में हो जाए तो फिर इससे सुंदर और क्या है।
तो भीष्मक कहने लगे, दुष्ट, तू अपनी बहन का विवाह और अपने साले के साथ में कर देगा।
रखम कहने लगा, पिताजी का एक बातें करते हैं, अरे जब उसने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ में कर दिया तो मुझे करने में कौन सी हर्ज है।
जवाब दिया रुखम, ये बात कहने से पहले तू मर क्यों नहीं गया, तू मेरे सामने क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा है।
रुखम कहने लगा, पिताजी मैंने जो कह दिया वो कह दिया, हमारी बहन का विवाह होगा तो हमारे साले ससुराल के साथ में, कृष्णागर इस जगह पर दूल्हा बन करके आया तो फिर तलवारें चल जाएंगी, किसी भी जगह पर सुहागने दिखाई नहीं देगी बल्कि विधवाएं ही दिखाई देंगी।
जवाब दिया, बेटा मेरी बात को मान लीजिए, मेरे घर में दो चार लड़कियां नहीं है, दो चार लड़कियां नहीं है। रुखम नहीं मालूम है तुम्हें।
अरे इकलौती धिया रे हमारी, अरे इकलौती धिया रे हमारी, और बड़े
बेटा रुको,
अरे तू मान ले बात हमारी रे हमारी रे, हाय हमारी, और बोला
जवाब दिया, बेटा मेरी बात को मान लीजिए,
अगर श्याम सुंदर इस घर में दूल्हा बन करके आए तो ये घर पवित्र हो जाएगा, मानो मेरी बात। रुखम कहने लगा, पिताजी जो मैंने कह दिया बस वही कहता रहूंगा, शादी होगी तो हमारे साले ससुराल के साथ में, अन्यथा श्याम इस जगह पर दूल्हा बन करके नहीं आएगा। और पैर पटकता हुआ रुखम दरबार से निकल करके चला गया। घर पर जब पहुंचा है, लेकिन भैया रुक्मिणी आंगन में बैठी हुई थी। रुक्मिणी को जब ये सुनने के लिए मिला है कि मेरा भाई अपने साले के लिए शादी करना चाह रहा है, हृदय में बहुत ही दुखी हुई, सोचने लगी ये क्या हुआ, मैं अपने भाई के साले की दुल्हन बनकर के कैसे जाऊंगी, मैं श्याम सुंदर के बिना अपने प्राणों को दे दूंगी। और रुक्मिणी आंगन में बैठी बैठी रो रही थी, सोच रही थी। तब तक रुक्मिणी की सहेलियां उसके नजदीक पहुंची और जवाब दिया, बहन तेरी तो किस्मत ही खुलेगी, ससपाल तो बहुत बड़ा राजा है जिससे देवता भी डरते हैं, और तेरी शादी उसके साथ में हो रही है। रुक्मिणी की सहेलियां बोली हैं, बहन समझाते हुए जवाब दिया है,
आंसू क्यों बहते नैना,
एक सहेली बोली बहन,
अरे तुझे तो खुश होना चाहिए हैं, और तेरे नेत्रों में ये आंसू,
आंसू क्यों बहते नैना, बतलाओ प्यारी बहना,
लड़ाई।
सचपाल तो बहुत बड़ा राजा है और तेरी शादी हो रही है, तो फिर इससे अच्छा और क्या यार, तुझे तो हंसना चाहिए और तू रो रही है।
रुक्मणी कहने लगी, बहन तुम उसका नाम मेरे सामने मत लो, तुम उसका नाम मेरे सामने मत लो, क्योंकि नहीं मालूम है तुम्हें बहन।
आंखों में आंसू लेकर रुक्मणी कहने लगी, हम तुम्हें क्या बताएं
सहेली भाई, जीवन की ख्वारी जब लखी खिन से कहे अब बात।
लेके जवाब दिया, बहन तुम्हें नहीं मालूम है
प्यारी सखी मेरी, तुम बाकी नहीं करो बात। रुक्मिणी बोली, प्यारी सखी मेरी तुम बाकी नहीं करो बात, और कापे दिगपाल बासे मेरो उथर रावेगा।
जवाब दिया बहन,
अरे तुम ससुराल की बात मेरे सामने न करो, उसका नाम मेरे सामने मत लो। मैंने जो कहा है, मैं श्याम सुंदर के अलावा ससुराल की दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं अपने प्राणों को दे दूंगी। तो सहेली कहने लगी, क्या तुझे भरोसा है कि श्याम तेरे पास में आएंगे? बिल्कुल भरोसा है। अगर वो नहीं आए तो रुक्मिणी कहने लगी, बहन तुम्हें नहीं मालूम है, श्याम सुंदर नहीं आए तो? जवाब दिया है बहन,
मैं तो श्याम की जुगनिया, मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी, मैं तो श्याम की जुगनिया बन जाऊंगी रे, घर से भाग जाऊंगी।
रुक्मिणी बोली, बहन तुम्हें ना मालूम,
रुक्मिणी जो है उसी जगह पर बैठी रह जाती है और सहेलियां वहां से चली जाती, और रुक्मिणी रोती नहीं। बाकी बाद में जब महलों के अंदर पहुंची, रात भई तो रुक्मिणी सोई, लेकिन हमेशा श्याम सुंदर के ही ध्यान में जब लगी रहती हो। जब रात भई सपनों भव, सपने में ही कन्हैया को देखो, और जब कन्हैया को देखो रुक्मिणी ने, अब भी सोई रही थी मतलब लेटी में ही, अब जब सपने में देखो तो हमें सब अपनों ही मालूम पर है। रुक्मिणी एकदम से उठ के बैठ गई सपने में, और श्याम सुंदर जब नजदीक आए, जवाब दो रुक्मिणी, और कन्हैया को जैसी देखो सोई रुक्मिणी रोने लगी। जवाब दिया श्याम, चलो तुम आ गए, ये बहुत अच्छा हुआ। कहाँ मेरा भाई अपने साले के साथ में शादी करना चाहता है, और तुम ऐसा करो तुम हमें ले चलो। अब उन्हें कहा मालूम सपनों हो रहे थे हकीकत है। तो श्याम सुंदर कहने लगे, रुक्मिणी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं, नहीं मालूम है रुक्मिणी तुम्हें? कन्हैया बोले हैं, रुक्मिणी हम तुम्हें बताएं, अरे पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो इस यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो इस यार की ऐसी तैसी,
श्याम सुंदर बोले रुक्मिणी, अरे हम कुछ कह रहे हैं सुना ना,
पाप हो जिस प्यार में, पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी,
यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी,
यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी,
जवाब दिया रुक्मिणी तुम चिंता मत करो, तुम रो ना, तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन महेंद्र भाई साहब हम बताएं आपको
कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, वो दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले,
श्याम सुंदर जो है वो रुक्मिणी के स्वप्न में बैठे हुए हैं और रुक्मिणी से एक बात कही, रुक्मिणी तुम रो आना, ऐसा करो तुम हमारे पास में एक पत्र भेज देना। और पत्र भेजने के बाद में अगर पत्र हमें मिलेगा तो हम तुम्हारे पास में आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और इतने शब्द कहने के बाद में श्याम सुंदर तो रुक्मिणी के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। रुक्मिणी की एकदम से आंख खुली, भड़बड़ाए के चारपाई पे बैठ गई, जवाब दिया, श्याम अभी तो तुम थोड़ी देर पहले मेरे पास में थे लेकिन अब तुम कहां चले गए, मेरे पास में आ जाना। रुक्मिणी रोती रही, सवेरा हो गया और उधर रुक्मिणी तो रो रही आंगन में, उधर रुकुम ने नाई और पंडित को बुला लिया, इधर आ जाइए। कहिए महाराज, हमें बुलाया? बिल्कुल, क्या काम है? तुम ऐसा करो हमारे पत्र को लेके हमारे साले साहब के पास में चले जाओ। बोले लिख दीजिए। रुकुम जो है अपने साले सस्पाल के लिए पत्र लिखने लगा, पत्र, आदरणीय हमारे साले सस्पाल, मुझे मालूम है कि तुम बहुत बड़े राजा हो, तुमसे देवता भी डरते हैं, देवता भी डरते हैं, लेकिन हम तुम्हारे पास में नाई और पंडित को भेज रहे हैं। और कुछ लिखा? क्या लिखा? जवाब दिया, ये पत्र लेके हमारे साले साहब के पास में चले जाओ। नाई और पंडित उस पत्र को लेके चले, धीरे 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 आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं और चंदेरी में पहुंचे। सस्पाल राजगद्दी पर बैठा हुआ था, जैसे ही सस्पाल ने देखा कहने लगा, कहो कहां से आना हुआ? ब्राह्मण ने वो पत्र निकाल करके दे दिया, महाराज आप सोते ही पढ़ लीजिए। और जैसे ही वो पत्र सस्पाल ने पढ़ा, मारे खुशी से गद्दी से उछल पड़ा, बाजी वाह बाजी वाह, अरे मेरी बहनोई की बहन तो बड़ी सुंदर है और अगर उनके साथ में शादी हो जाए तो फिर इससे सुंदर और क्या है।
सोचने लगा भगवान हमारे जैसे बहनों ही हरिकाऊ को मिले, बड़ा खुश है। नाई और पंडित की बड़ी खुशामद की, उसके बाद में उन्हें तो भेज दिया, लेकिन श्याम सुंदर को जब नाम वाम लिखो देखो तो अपने हृदय में एक बात सोची कि भला हम श्याम सुंदर के साथ में कैसे युद्ध करेंगे। फिर हृदय में ये विचार आया कि वो तो ग्वाला है, वन वन में गाय चराता रहा, क्या जाने युद्ध करना कि युद्ध कैसे होता है। अपने मौसी के लड़का दंत वक्र को ये खबर दी है कि तुम सेना सजाओ। सेना जब सजाई है मेरे भैया,
अरे दंत वक्र सज गओ है रे, नहीं चिंता कोई मन में।
जवाब दिया, भाभे कहिए।
कहने लगा ऐसा करो दो चार लड़कियां बुला के ले आओ।
भाभी बोली लड़कियां, लड़कियों को क्या करोगे?
लो सुन लो बात, वो हमसे पूछ रही लड़कियों का क्या करें। अरे हमें दूल्हा बनाओ, शादी करने के लिए जाना है।
शादी?
भाभी बोली न कहूं से लगो ना आई न टीका हो, दूल्हा बने के सीधे सीधे कहां जा रहे। लो सुन लो बात, वो हमसे पूछ रही दूल्हा बन के कहां जा रहे। अरे नहीं मालूम है, हमारे बहनोई साहब ने हमारे लिए पत्र भेजा, तो हम रुक्मणी के साथ में शादी करने के लिए जा रहे।
भाभी बोली बहनोई की बहन के साथ में शादी, इतना बड़ा अनर्थ।
अरे नहीं मालूम है, बहनोई की बहन एक देवी के समान होती है और तुम उसके साथ में शादी करने के लिए जाते हैं।
रुकम की बहन के साथ में? नहीं मालूम तुम्हें, वो देवी है।
ससबाल कहने लगा भाभी अगर ऐसी देवी देखी जाए ना तो कल से शादी होनी भी बंद हो जाएगी, इसलिए ऐसा करो तुम हमें दूल्हा बनाओ।
भाभी एकदम से भागी
और पड़ोस में से दो चार लड़कियां बुलाए के लाई, और जैसी लड़कियां बुलाए के लाई वो तो ससपाल को दूल्हा बनाए उठी दूल्हा। और जब दूल्हा बनाए रही थी लेकिन ससपाल को असगुन होने लगे। असगुन कैसे? असगुन भाई ससपाल को, अरे शीश मोहर जब धरो भाई छीकया गारी, मोहर रखो एकदम से सामने छींक भाई छींक, और पटा से लपटो पाओ पटक लगी भारी, पटा पे जैसे ही पैर रखो बड़ी जोर से पटक लगी, और जैसी पटक लगी और जल्दी उठी बैठे, और जैसे ही उठे लड़कियां जो रहे ताली बजाए घस उठी। ससपाल कहने लगा काय हंस रही हो? अरे नहीं मालूम, छतरी तो हमेशा गिरते ही रहते हैं, दूल्हा बनाओ क्यों हंस
देखो तुम दूल्हा बन के मत जाओ, और हमने तो जो सुनी है कि श्याम सुंदर दूल्हा बन के आए रहे, और कन्हैया के आगे तुम्हारी कोई पेश ना जाए, तासे तुम दूल्हा बन के मत जाओ।
सजपाल कहने लगा, भाभी दुल्हन कौन लेके आएगा वो तो बाद में ही मालूम पड़ेगा, और तुम हमें ये बताओ कि दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रही।
भाभी बोली, जब हाथ की तरफ देखते तो कंगनू बंधो है, सर की तरफ देखते तो सर पे मोहरू रखो है, और जब चेहरा की तरफ देखते तो जब मालूम पत्ते के वे आंखें में काजल ना लगो।
तो सतपाल कहने लगा, खड़ी खड़ी देख क्या रही भाई, पहले काजल लेके आओ, पहले काजल लगाओ, उसके बाद में देखो अच्छा लगता है या नहीं लगता है, जाओ ना।
अब भाभी फिर से भागी,
भागी
हाथ में उंगरियन में काजल लगाए के लिए, और काजलू लगाती जाती और समझाती जाती, जब आप दो लला मेरी बात मानो, भाऊ का